ஒன்று இனிமேல் கேட்குறேன் சொல்லு தரலாம் சொல்லி பண்ணால் என்ன அப்படின்னு ரெக்கார்டிங் இனிமேல் கேட்குறேன்
प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि राधा के धन भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर हरि विमलंदे ओम ज्ञान त्रिविरंधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावतं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की जय श्री गोपाल की जय। तो जैसे हम नित्य श्रवण करते आ रहे हैं, श्रवण न कर आज श्रीमद् भागवत में जगह भक्त भगवत की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो ऐसे तो इसका शीर्षक है, चौथा अध्याय है, इसका शीर्षक है मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। तो आज इसका केवल हम भूमिका तक ही, एक यहाँ तक पहुँचने के पहले केवल हम एक परिसर तक ही पहुँच पाएंगे कि किस तरह श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के दिव्य उपदेशों को गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया क्या आरना कोरिया मोने आशा। तो श्रील प्रभुपाद जी यद्यपि वो तभी दीक्षित नहीं थे, फिर भी अब गुरु महाराज से इस कार्तिक महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा जो होता है, तो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों के अनुसार निर्धारित था, वही पद चिन्हों पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा करवा रहे थे अपने शिष्यों के साथ बहुत बड़ी संख्या में, और उनका किस तरह लोगों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी रंग के किसी भी लोगों को अपने वर्ण के अनुसार नहीं बल्कि गुण के अनुसार उनको ब्राह्मण बनाया, उनको यज्ञपवित संस्कार दिए, उनको दीक्षा दिया। तो इस बात पर विरोध था जो तथाकथित जो केवल जन्म से ही ब्राह्मण थे उनका, और विशेषकर वृंदावन में लोगों ने उनको उनका प्रतिकार किया। किस तरह उन्होंने लोगों से अपने तर्क और शास्त्र के अनुसार पर कि ये सही है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की नाम उनका रूप उनका लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है और उनकी शरण ग्रहण करता है, एक प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत होकर यदि वो किसी गुरु का आश्रय लेता है, उसका उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस तरह कोई भी धातु जब मर्करी के संपर्क में आता है, क्या कहते हैं मर्करी के संपर्क में आकर से होने से वो सोने के रूप में बदल जाता है पारा के, उसी तरह पारसमणि, तो उसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत किसी आचार्य के या गुरु के आश्रय लेता है और भगवान नाम लेता है तो उसे साधु मानना चाहिए। और उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से द्वितीय बार मिलने गए ताकि उनका दर्शन हो और उनसे कुछ दिव्य उपदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन मनुष्य जीवन को सार्थक कराकर अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए वो पहुंचे। प्रथम में ही यहां पर सत्य स्वरूप महाराज ने शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा शिल प्रभुपाद जी को लिखे गए पत्र को लिखा है जो कि दिसंबर महीना 1936 में लिखा गया था। इसमें लिखा है, मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं। यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों में लगाकर मिशन की सेवा में लग जाए। तो यहाँ एक गुरु अपने शिष्य से उनकी क्षमता को देकर वो उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने के लिए देश विदेशों में, क्योंकि भगवान के हैं पृथ्वी ते जतो आसे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और इस वाणी को किन्होंने सत्य किया? श्रील प्रभुपाद जी। तो आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ते हुए श्रवण कीर्तन करें। सन 1932 ई के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थयात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने सूक्ष्म मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमाएं अभय सम्मिलित होना चाहते थे किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत से फिर मिलेंगे और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो परिक्रमा शिल भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वह वृंदावन में आयोजित बड़ी से बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों की परिक्रमा में सम्मिलित करने के वे उस सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 में मैं भी जब शिल भक्ति सिद्धांत से अपने प्रचार कार्य आरंभ किया था उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना था। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यता बस्ती से दूर रहते हैं और पूजा अर्चन वृंदावन जैसे एकांत स्थान में करते हैं। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दिनहीन भिक्षुकों के का सरल तरीका अपनाते हैं। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्ष की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्य के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने यह धारणा फैलाई कि भक्त विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्हें एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण किया था। उस वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायी के साथ उल्टा डंगा के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं एक पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वो लाखों खर्च कर सकता है। जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथ के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं जैसे 1930 की बात है, 1930 या 40 की, जहां पर हमारा देश जो भारतवर्ष है वो अंग्रेजों के शासन के अनुगत था, तो वहां पर वो विदेशी कपड़े, विदेशी यंत्र यानी गाड़ी, मोटर गाड़ी आदि को उन्होंने यहाँ पर ये किए थे। लेकिन गांधी जी ने विरोध किया था, बहिष्कार किया था कि विदेशी हम कोई भी वस्त्र या कोई भी साधन को अपनाएंगे नहीं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने ग्रेजुएशन के इसको भी नहीं लिया था, सर्टिफिकेट को भी नहीं लिया था, क्योंकि वे भी गांधी से प्रभावित थे। तो यहां देखते हैं, लेकिन यहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं क्यों कि हमें बहिष्कार करना चाहिए अपने लिए, लेकिन भगवान के लिए, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है और उन ये सारे यंत्र जो भी है वो भगवान के द्वारा ही प्रदर्शित, इसलिए उनके सेवा में यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। तो आगे बताते हैं, भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधन से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उनका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाए। योग में इसे भी पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्र सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए थाने शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और सभी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। इसी भावना से उन्होंने बाजार के भवन का निर्माण किया कराया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें बारीकी से निर्मित चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। ये गुड़िया बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ इस प्रकार मंच पर एकत्र किया जाना एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो आज हम देखते हैं, हम श्री श्री राधा राजगारी प्रांगण में जब दर्शन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई दार्शनिक हमें दर्शन, कुछ झांकियों का दर्शन प्राप्त है जो कांच में गढ़ित है। तो भगवान का वहां हम दर्शन कर सकते, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने से, जैसे वहां पर विट्ठल रुक्मणी जी हैं, भगवान शेष नाग पर सोए हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु झारखंड के इसमें संकीर्तन करते हुए चल रहे हैं, उनके साथ कई जानवर भी, केवल मनुष्य नहीं जानवर तक इस हरिनाम संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। और इससे जो हमारे दिल में, हमारे जो अंतकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य या भेदभाव स्त्री पुरुष या रंग का, जो भी ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वो हटकर एक जुट होकर हरिनाम संकीर्तन करे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए और भगवान का नित्य स्मरण करे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण हो, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने इन गुड़ियों का झांकी पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। उसी वर्ष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा करने निकले। इस यात्रा में श्री भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई। 1932 की तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय भाषाओं से 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से आधा दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, यद्यपि कलकत्ता भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है और भारत पृथ्वी पर के सभी देशों में केवल एक देश है और पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है और इस ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड के केवल एक है, जिसकी संख्या इतनी अधिक है कि यह एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते हैं, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकाश से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य है जो नदिया प्रकाश दैनिक है। वास्तव में यदि रुचि संपन्न पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषय समाचार पत्र प्रतीक्षण छापे जा सकते हैं। किसका अभाव है? जो गिराट जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, जिनको आदत है न्यूज़पेपर नए नए खबरों की, ऐसे लोगों की, पाठकों की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक जगत के पत्रिका को यदि पढ़ने के ग्राहक हो तो प्रति क्षण ऐसे पेपर को छापे जा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था हार्मोनिस्ट, और 1932 ई की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ, श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा। मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति परमहंस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन कर प्रसन्नतापूर्वक बिना जाति धर्म रंग अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य के, जिन्होंने 1514 ई में शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्तिपूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़िया मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थायी प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम एक या दो दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय हो गए थे। श्री प्रभुपाद परिक्रमा के समय में दीक्षित नहीं हुए थे, लेकिन मेरे मन में गौड़िया मठ के लोगों के संबंध में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले, अतएव मैं कोशी में उनसे जा मिलना। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के वास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेम गाड़ कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिव ग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थल का दर्शन करते हुए शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। यद्यपि किसी ने अगर ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं किया हो तो उसे जरूर एक बार जाना चाहिए। तो किस तरह इतने लोगों का सुंदर व्यवस्था होता है, पहले से ही पंडाल लगा होते हैं और श्री गौर निताय साथ में चलते हैं, उनके साथ भजन मंडली चलती है, उनके पीछे पीछे पताका लहराते हुए वैष्णव पताका लहरा लोग चलते हैं, उनके पीछे सब अनुगामी चलते हैं, और किस तरह से सुंदर भगवान के व्रज मंडल भूमि में जहाँ भगवान ने समस्त लीलाओं का प्रदर्शित किया था, उस धूलिए का आस्वादन करते हुए उन लीलाओं पर जहाँ पर भगवान ने अपने अनंत लीलाओं को प्रदर्शित किया था, ऐसे स्थान पर वरिष्ठ वैष्णव गुरुजनों से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उनका स्मरण करना और वहाँ पर उन लीला स्थली पर वास करना, ये परम सौभाग्य की बात है। तो अपने जीवन काल में कम से कम यदि बहुत से हैं भक्त हैं जो बारंबार हर साल बिना फेल कई सालों से करते हैं और वो आनंदपूर्वक करते हैं, तो हमें भी इसे दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कभी ना कभी जीवन में, चाहे एक साथ पूरा महीने की छुट्टी ना मिलता हो तो कुछ दिन के लिए, लोग हमने देखे हैं, हमें भी भगवान वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से एक बार ब्रजमंडल निकाह करने का अवसर मिला था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग प्रथम के 10 दिन करते हैं, देश विदेश से आते हैं, अमेरिका आदि से आते हैं लोग, केवल यही भारतवर्ष से नहीं जाते हैं। अमेरिका से आते 10 दिन की छुट्टी लेकर आए, इतना खर्च करके 10 दिन लेकर चले गए, फिर अगले साल जो 10वां 11वां दिन से जो परिक्रमा शुरू होती है 5 दिन हो या 10 दिन, फिर 10 दिन करके जाते हैं, फिर दूसरे साल और 10 दिन के लिए करते हैं। लेकिन अपना पूरी एक दृढ़ निश्चय लिया है कि व्रजमंडल परिक्रमा करना है। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी भी भले 1 या 2 दिन के लिए क्यों न हो, ऐसे वैष्णव का संग, अपने गुरु महाराज का संग, उनका दिव्य उपदेश ग्रहण करने के लिए उन लीलास्थली पर पहुंचने का निश्चय किए। डेरे अर्धवृत्तकार रूप में गाड़े जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। शिल भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही संन्यासी के डेरे रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग डेरे होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छा पूर्ण रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर जो सैकड़ों ढेरों से बना होता था, डेरों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थयात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और हरे कृष्ण का जाप करते थे। तब भगवान का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री। वे सभी पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, उस स्थान पर जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि श्रील भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञ पवित्र धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण में वैदिक शास्त्र, जो ब्राह्मण परिवार पैदा नहीं हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने लेखों और भाषणों में वैदिक शास्त्रों के बराबर यह सिद्ध करना आ रहे थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुण से ब्राह्मण होता है। प्राय वे सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते हैं जिसका आशय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा से मिलने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वे श्रीमद् भागवतम में से भी प्राय एक श्लोक सुनाया करते जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ होता है मगर शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। तो इस पर श्री प्रभुपाद जी एक बंगला कहावत बताते हैं, कहते हैं कि मुची होय सुची यदि कृष्ण भजे, और सुची होय मुची यदि कृष्ण त्यागे। यदि मोची यदि कृष्ण को भजता है तो उसे हमें सूची यानी ब्राह्मण समझना चाहिए। और सूची सूची यदि कृष्ण त्यागे यानी ब्राह्मण यदि कृष्ण को त्याग दिया तो उसे हम ब्राह्मण नहीं उसे मोची समझना चाहिए। क्यों? वो केवल जन्म से नहीं, जन्म से ब्राह्मण है बाकी गुण से मोची का कार्य कर रहा है तो शूद्र मानना चाहिए उसे, तो उसे शूद्र मानना होगा। कलयुग में आध्यात्म उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस महामंत्र का आश्रय लेकर चलेंगे तो लोग हमें भी साधु समझेंगे और हमारा कर्तव्य भी है ये। जब स्थानीय पंडित शिल भक्ति सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा यज्ञोपवी और संन्यास के वस्त्र देने में दिखाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वतापूर्ण और ओझ भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के सात मुख्य मंदिरों पर पहुंचा जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट शिष्यों ने किया था तो तीर्थयात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं। वृंदावन के दुकानदार भी अपने धंधे बंद कर लिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थयात्रियों पर पत्थर भी फेंके, किंतु परिक्रमा दल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वो कोसी पहुंच गया जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषगार था। अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और महलों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे या पगडंडियों थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते हैं। भांति भांति की चिड़िया और वायुमंडल में गूंजने वाली उनकी बोलियां अवैष्णव को भी पसंद आने बिना न रहती। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधूली वेला में चहचहाने वाली चिड़िया के उन्माद भरे अलकारों के से पूरित हो जाता। वृंदावन के महत्व को न जानने वाले के मन के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुग्धकारी था जहां लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलभते कंडों और पृथ्व की मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिली जुली अजीब गंध उठ रही थी। कितनी ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली दूर तक चली गई थी। चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी, कोमल श्वेत परिजात पुष्पों का से लदे वृक्ष थे, बड़े बड़े पीले रंग के कदम के पुष्प थे, जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई देते हों। सड़क पर घोड़ा गाड़ी की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन ये तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाली गाड़ी से बड़े बड़े परिवार लदे थे, कुछ तो सैकड़ों मीलों से आ रहे थे। तीर्थ यात्रियों के बड़े समूह जो गांवों के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी, गेहूं रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यवसायी भी थे, जो ढंग से पहने ओढ़े थे, नागरिक सीधे सादे लगते थे और हो सकता है एक दो दिन के लिए वहाँ जा रहे हों। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था, यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखने जहाँ भगवान कृष्ण के ने अपनी लीलाओं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, कैसी राक्षस का वध और संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे, लेकिन उनसे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा उनके मन में फल रही थी। लंबे व्यवधान के बाद वे उस साधु पुरुष से मिलने जा रहे थे जिनके बारे में वे हमेशा सोचा करते थे। वे साधु पुरुष थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने श्री कृष्ण भावना का प्रचार करने वाले भगवान श्री चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अभय उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वो उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। तो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले। और मैं आपकी सेवा कैसे करूं, जो उनके दिल में जिज्ञासा थी उसको प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर हरि प्रेमानंद श्री हरि।